हरे कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 8 टेक्स्ट नंबर 16। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं दराति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रशातं सहगणरघुनाथन् वितं तं सशिवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादा सकललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपीश गोपीका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरंगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुतदेवी प्रणमामि हरि प्रिय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिंधुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद्गीता मात की जय हो। अध्याय 8 जिसका शीर्षक है भगवत प्राप्ति। अत्यंत ही सुंदर अर्जुन ने प्रश्न पूछे थे भगवान से, और अंतिम प्रश्न था कि मृत्यु के समय जो भक्ति में लगा रहता है वो भला आप कैसे स्मरण कर सकता है, उसके विषय में बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत बहुत विस्तार से पहले योग में श्रुत भक्त किस प्रकार से भगवान का ध्यान करते हैं उसके विषय में बताया, और उसके बाद जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, उनके विषय में भगवान ने कहा, अनन्य चेताः सततम् यो मा स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। के वैसे दूसरे सारे तरीकों से भी, बहुत सारे तरीकों से भगवान को याद किया जा सकता है, परंतु जो कृष्ण भक्ति का मार्ग है, जिसमें अनन्य चित्त के साथ कंटिन्यूस भगवान को स्मरण किया जाता है, वो बहुत ही सुलभ है। तो ये सुलभ पूरी भगवद गीता में केवल एक ही जगह पर, यहाँ श्लोक नंबर 8.14 में भगवान ने बोला है कि यदि आप अनन्य चित्त से मेरा स्मरण करोगे तो मैं बहुत ही सुलभता से, बहुत ही आसानी से आपको प्राप्त हो जाऊंगा। और भगवान कहते हैं अगर आपको आसानी वाला तरीका अपनाना है तो ये सब योग वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है। आप खाली क्या करो, मेरा स्मरण करो। स्मरण कैसे करो, मेरा श्रवण करो शुद्ध भक्तों से, और मेरे पवित्र नाम का जप करो बहुत ही आसानी से। तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः, जो सदैव ऐसा करते रहते हैं उनको मैं बहुत ही सुलभता से प्राप्त हो जाऊंगा। अब भगवान प्राप्त हो जाएंगे तो क्या, उसका क्या लाभ होगा? भगवान उसके विषय में कल हमें बता रहे थे श्लोक नंबर 15 में, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमं गताः। भगवान कहते दिस इज द हाईएस्ट अचीवमेंट ऑफ लाइफ, सब परम सिद्धि है ये, इससे अधिक और कुछ है ही नहीं कि कोई मुझे प्राप्त कर ले। क्योंकि यदि कोई एक बार मुझे प्राप्त कर लेता है फिर उसे कभी भी इस दुखों भरे संसार में वापस नहीं आना पड़ता है, क्योंकि यही तो परम सिद्धि है। तो फिर यहाँ पर किसी को प्रश्न हो सकता है कि कितने सारे लोक हैं, इतने सारे ब्रह्मांड हैं, और एक एक ब्रह्मांड में 14-14 लोक हैं, तो हो सकता है कहीं और भी ऐसी जगह होगी जहाँ पर यदि हम चले जाएं तो पुनः इस मृत्यु लोक में वापस ना आना पड़े। तो ऐसा मन में ऐसा सवाल आता है ना कि खाली गौलोक भगवान का धाम है, ऐसा थोड़ा होगा, दूसरी भी तो कोई जगह होगी। तो इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण आज के श्लोक में देते हैं, अत्यंत ही सुंदर और बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास करेंगे आप सब। भगवान कहते हैं, आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावृत्ति नोर्शुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। सॉरी, क्षमा कीजिएगा। श्लोक नंबर 16 देखिए, आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावृत्तिनोर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावृत्ति नोर्शुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावृत्ति नोर्शुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावृत्ति नोर्जुन मामुपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। शब्दार्थ आ ब्रह्म भुवनात्, यानी जो सत्य लोक है, ब्रह्म लोक है, वो वहां तक भी लोका, सारे लोक, जितने भी लोक हैं, उनमें क्या होता है, पुनर आवृत्ति, पुनर माना दोबारा या फिर वापिस से, आवृत्ति मतलब लौटने वाले, जिधर भी आप जाओगे उधर से आपको वापिस लौटना पड़ेगा। अर्जुन, हे अर्जुन, परंतु भगवान कहते माम उपेत्य, माम यानी मुझको, उपेत्य यानी पाकर, जो एक बार मुझे प्राप्त कर लेता है तू, लेकिन, लेकिन का मतलब होता है बाकी सब में तो वापिस आना पड़ता है, लेकिन माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म, पुनर् माना दोबारा से, जन्म यानी वापिस से जन्म, पुनर्जन्म न कभी भी नहीं विद्यते, कभी भी दोबारा जन्म नहीं होता है, कब, जब भगवान के पास जाते हैं। और अगर किसी भी लोक में चले जाते हैं तो ब्रह्म भुवना लोक का पुनरावृत्ति अर्जुन, तो फिर वापिस से आना पड़ता है। अनुवाद देखिए, इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है, किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि समस्त योगियों को, चाहे वे कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो या हठ योगी, अंततः भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है, तभी वे कृष्ण की दिव्य धाम को जा सकते हैं, जहां से वे फिर कभी वापस नहीं आते। अत्यंत ही सुंदर बात है कि देखिए, जो इसका मतलब क्या है कि जो अब भक्ति कर रहे हैं उन्होंने सारे योगों को क्रॉस कर लिया है, और अगर किसी और योग में कोई अटका हुआ है, जैसे कर्म योग में, ज्ञान योग में या फिर अष्टांग योग में, तो फिर ऐसे करते 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 भगवान कहते हैं बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जब उसके हृदय की सारी अज्ञानता समाप्त हो जाती है, हृदय में ज्ञान का प्रकाशमान दीपक प्रज्वलित हो जाता है, फिर वो क्या करता है, भगवान कहते हैं माम ज्ञानवान माम प्रपद्यते, फिर वो मेरी शरण में आता है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते पहले भले कोई क्या कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो, हठ योगी हो, कुछ भी हो, आखिर में उसे भगवान की भक्ति को अपना ही पड़े अपनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक भगवान की भक्ति को हम नहीं अपनाएंगे, जब तक भगवान से प्रेम नहीं करेंगे, तो भगवान के दिव्य धाम तक जाना संभव नहीं। और जब तक भगवान के दिव्य धाम में नहीं चले जाते, तब तक भगवान कहते हैं चाहे आप किसी भी लोक में चले जाओ तो भी पुनरावृत्ति, वापिस से आपको आना पड़ेगा। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कहते किंतु जो सर्वोच्च भौतिक लोकों अर्थात देव लोकों को प्राप्त होता है, उसका पुनर्जन्म होता रहता है। जिस प्रकार इस पृथ्वी पर पृथ्वी के लोग उच्च लोकों को जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मलोक, चंद्रलोक तथा इंद्रलोक जैसे उच्चतर लोकों के लोग पृथ्वी पर गिरते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताते कि पृथ्वी के लोगों को खाली ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ऐसे कार्य करें और हम ब्रह्मलोक में चले जाएं या फिर स्वर्ग लोक में चले जाएं, जनलोक तपलोक में चले जाएं, तो वहां से कभी आना नहीं पड़ेगा। वहां से भी चाहे किसी भी लोक में चले जाएंगे, तो जिस तरह पृथ्वी के लोग वहां पर जा सकते, तो वहां के लोग भी वो अपना, जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है तो वहां से गिर जाते हैं नीचे, उनको गिरा दिया जाता है कि अब तुम्हारे पास जितना समय था, जितनी तुमने पुण्य एकत्रित किए थे, तुम्हें यहाँ पे रखा, अब तुम यहाँ पर और नहीं रह सकते। अगर और रहना है तो जाओ पृथ्वी पर, दोबारा से अच्छे कार्य करो और वापिस से आओ। तो इस तरह से बार बार उसको जन्म लेना पड़ता है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते छांदोग्य उपनिषद में जिस पंचाग्नि विद्या का विधान है, उससे मनुष्य ब्रह्म लोक को प्राप्त कर सकता है, किंतु यदि ब्रह्म लोक में वह कृष्ण महामृत का अनुशीलन नहीं करता तो उसे पृथ्वी पर फिर से लौटना पड़ता है। जो उच्चतर लोकों में कृष्ण महामृत में प्रगति करते हैं वे क्रमशः और ऊपर जाते रहते हैं और प्रलय के समय वे नित्य परम धाम को भेज दिए जाते हैं। अब श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसा नहीं है कि आप ब्रह्मलोक में चले जाओ और वहां पर बस इंजॉयमेंट करो और भक्ति नहीं करो बस भगवान के। अब वो ब्रह्मलोक में भी रहकर अगर आप कृष्ण महानामृत में भक्ति नहीं करते हो, भगवान से प्रेम नहीं करते हो, फिर भगवान आपको अपने धाम में नहीं आने देंगे। भगवान के धाम में केवल वही जा सकता है जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान से प्रेम करता है। भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही साफ साफ बता दिया, अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। कोई इस बात में संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे वो प्राप्त करता है जो पूरा जीवन मुझे स्मरण करता है और अंत समय में मुझे स्मरण करता है। और विधि क्या है? विधि ये है तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धच। सदैव भगवान का स्मरण करना है और साथ साथ में अपने समस्त कर्तव्यों को भी पालन करते। तो भगवान कहते हैं कि ब्रह्मलोक में भी जाकर यदि मेरा स्मरण नहीं किया, कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं किया तो फिर पुनः पृथ्वी पर लौटना पड़ेगा। और जो भी कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करते हैं वो क्रमशः ऊपर जाते हैं और फिर जब प्रलय होती है तो क्योंकि वो कृष्ण भावनामृत का पालन। कृष्ण भावनामृत क्या है? भगवान के विषय में श्रवण करना, भगवान के पवित्र नाम का जप करना, भगवान की लीलाओं कथाओं के विषय में प्रचार करना, भगवत गीता पढ़ना और भगवान की सेवा करना, भगवान को भोग लगाना और प्रसाद का सेवन करना, भगवान के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाएं करना, ये कृष्ण भावनामृत है। तो जो कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करते हैं श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं वो क्रमशः ऊपर उठते हैं, धीरे धीरे वो ऊपर जा रहे होते हैं क्योंकि अब उनके पुण्य एकत्रित हो रहे होते हैं ना भगवान की भक्ति करते करते। और फिर अंत जब होता है, प्रलय होता है, तो क्योंकि वो कृष्ण भावनामृत में लगे हुए सदैव भगवान को याद करते हैं इसलिए उनको भगवान के परम धाम में भेज दिया जाता है। श्रीधर स्वामी ने अपनी श्रीमद् भगवद गीता भाष्य में यह श्लोक उद्धृत किया है, ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ति प्रति संचरे परस्यान्ति कृतात्मानः प्रविश्यन्ति परम पदम। जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है, ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ति प्रति संचरे, तो क्या होता है? जो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी हैं और वहां पर ब्रह्मलोक में रहकर जो कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करते हैं वो उनका क्या होता है? तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रवृत्त उनके भक्त। अब देखो ब्रह्म लोक में चले जाना क्या है? यहाँ से भगवान ने क्या कहा, आब्रह्म भुवनालोक का पुनरावृत्ति नोर्जन, कि जो ब्रह्म लोक में चले जाते हैं उन्हें भी वापस संसार में आना पड़ता है। लेकिन ब्रह्म लोक बहुत ऊपर है, हाईएस्ट लोक है, मतलब इस भौतिक जगत का, उसके बाद कौन लोक है। लेकिन वहां पर जाकर अगर ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी जो है वो भगवान के आदेश का पालन करते हुए संसार का सृजन करते हैं, तो ब्रह्मा जी शुद्ध डिवोटी, भगवान के प्योर शुद्ध भक्त हैं। तो वो ब्रह्मा जी और उनके दूसरे जितने भी वहां पर लोक में रहते हैं, अगर वो क्या करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, संप्राप्ते प्रति संचरे परस्यान्ति कृतान्मानः प्रविश्यन्ति परम पदम। यदि वो कंटिन्यूस भगवान की भक्ति करते रहते हैं, निरंतर भगवान की भक्ति में प्रवृत्त रहते हैं, तो फिर क्या होता है, अपनी इच्छा अनुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोक को भेज दे जाता। लेकिन अगर वो भक्ति नहीं करते तो भगवान ने कहा कि पुनरावृत्ति नो अर्जुन कि ब्रह्मलोक में भी चले जाओ तो अगर मेरी भक्ति नहीं करोगे तो फिर वापस संसार में आना पड़ेगा, लेकिन यदि भगवान की भक्ति करेंगे तो क्या होगा, आध्यात्मिक ब्रह्मांड में या विशिष्ट वैकुंठ लोकों में भेज दिया जाएगा। तो जिस तरह की उसकी भक्ति होगी उस हिसाब से उसको दूसरे लोक में भेज दिया जाएगा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालम् पङ्गुं लङ्घयति गिरम् यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 8 टेक्स्ट नंबर 16 अत्यंत ही सुंदर और महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान कहते हैं आब्रह्म भुवना लोका पुनरावृत्ति अर्जुन, यानी भगवान यहाँ पर यह बता रहे हैं कि जो बहुत इस भौतिक जगत का जो हाईएस्ट लोक है ब्रह्म लोक। अब जैसे इस भौतिक जगत में हम सब जानते हैं टोटल कितने लोक हैं, 14 लोक हैं। यह पृथ्वी जो है वो सेंटर में है, पृथ्वी के नीचे वो लोग स्टार्ट होते हैं जो कि अपराधियों, मतलब जिस जिस तरह से हम अपराध करते जाएंगे तो पृथ्वी से नीचे चले जाएंगे, और जो जो हम अपराध अभी नहीं किए मतलब पुण्य कर्म करते जाएंगे तो पृथ्वी से ऊपर के लोग चले जाएंगे। तो पृथ्वी के नीचे 7 लोग हैं, यानी सारे अपराधियों के लोग हैं, और पृथ्वी के ऊपर जो है वो 6 लोग हैं। पृथ्वी भी मतलब पृथ्वी में जो लोग रहते हैं ना वो भी अपराधी ही होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, यहाँ पर पृथ्वी लोक ऐसा है जहाँ सिर्फ एक एक ही पृथ्वी लोक ही ऐसा है जिसमें आप नए कर्म कर सकते हो। बाकी जितने भी लोग हैं यानी ऊपर के 6 लोग और नीचे के 7 लोग, जितने भी लोग हैं उनमें केवल जो आपने कर्म किए हैं उनको भोगने के लिए जाया जाता है, और वहां पर वो जब भोग लेते हो आप अपने कर्मों के फल, तो फिर क्या करना, भगवान श्री कृष्ण उसका बहुत ही सुंदर बताते 9.21 में, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम् विशालम् क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम् विशन्ति, कि वो बहुत बहुत समय तक विशाल समय तक स्वर्गलोक में जाते हैं परंतु क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम् विशन्ति, पुण्य समाप्त हो जाएंगे तो मृत्युलोक में आ जाएंगे। तो कोई सोच सकता है शायद केवल स्वर्ग की बात है, लेकिन यहाँ पर भगवान ने कह दिया कि यदि ब्रह्मलोक में भी चले जाओगे आब्रह्म भुवना लोक का पुनरावृत्ति अर्जुन, जैसे यह पृथ्वी सेंटर में है उसके नीचे क्या है, अतल वीतल सूतल तलातल महातल रसातल और पाताल, ये सारे तो ऐसे लोक हैं जो आप मतलब नीचे चले जाते हैं हम अगर अपराध करते हैं। जैसे भगवान बताते 14.18 में कि ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्तो मध्ये तिष्ठस्ति राजसा जघन्य गुणवेत्तस्तो अधो गच्छन्ति तामसा, अगर आप सत्वगुण में हो तो आप ऊपर के लोकों में जाओगे, यदि रजो गुण में हो यानी कि रजोगुण में यदि आप ये चाहिए वो चाहिए इस इच्छा पे हो तो फिर आप क्या करोगे सेंटर के लोगों में हो आ जाओगे, मध्य तिष्ठस्ति राजसा। और यदि आप अपराध के कार्य करते हो कौन से जघन्य गुणवित्तस्तो अधो गच्छन्ति तामस, तो फिर वो नीचे के लोकों में चले जाते हैं, अतल वितल अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। लेकिन जो अपराध नहीं करते मतलब पुण्य कर्म करते हैं पृथ्वी पर रहकर रजोगुण में होते हैं तो वो कार्य करना ही है उनको, तो फिर पुण्य कर्म करते हैं तो ऊपर धीरे धीरे प्रगति करते हैं, तो पृथ्वी से ऊपर है। इस पृथ्वी को भूलोक कहा जाता है, भू माना पृथ्वी, पृथ्वी पर कौन रहता है, मनुष्य रहते हैं और फिर दूसरे भी लिविंग एंटिटीज जितने होते हैं 84 लाख श्रेणियों में से कुछ, तो वो इस पृथ्वी पर रहते हैं। उसके बाद भूलोक आता है, भूलोक में भूत प्रेत पिशाच रहते हैं, ये वो वाले होते हैं भूत प्रेत जो शिव जी के भक्त होते हैं, जो शिव जी के साथ होते हैं ना, जैसे शिव जी विवाह करने में जाते हैं तो भी उनके साथ चलते, तो ये होते मतलब भक्त होते हैं, लेकिन ना शुद्ध भक्त नहीं होते हैं, बस उनका ऐसे ही होता है, बहुत प्रेत पिशाच होते हैं, लेकिन बहुत ही सिंसियरली भगवान शिव जी की या फिर इस तरह भक्ति करते हैं, तो ये है ना भूवा लोक में जाते हैं। उसके बाद स्वर्ग लोक आता है। स्वर्ग लोक में इंद्र है और दूसरे सारे 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं। उसके बाद महरलोक आता है। महरलोक में महर्षि नव योगेंद्र रहते हैं। उसके बाद सॉरी हाँ महरलोक में महर्षि लोग रहते हैं, और उसके बाद जो जनलोक आता है उसमें नव योगेंद्र रहते हैं। उसके बाद तपलोक है। तपलोक में 4 कुमार रहते हैं जो सदैव तपस्या करते हैं, सनक, संधन, सनातन, सनत कुमार, ये तपलोक में रहते। उसके बाद उससे भी ऊपर आता है सत्यलोक। सत्यलोक में कौन रहता है, इसको ब्रह्मलोक भी कहा जाता है, ब्रह्मा जी। और उस ब्रह्मलोक से ऊपर क्या आता है, वो जो आता है वो भौतिक जगत नहीं है, भौतिक जगत यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ये जो 14 लोक है, अब ये 14 लोक एक भौतिक जगत में है, सॉरी एक जो वो है ना ब्रह्मांड उसमें है। अब इस पूरी सृष्टि में जब कारण दक्षिणा विष्णु श्वास ले रहे होते हैं तो अनेक अनेक ब्रह्मांड उनके सांसों से निकलते रहते हैं और अंदर चले जाते हैं। तो दूसरे प्लैनेट्स जितने भी ब्रह्मांड हैं उनकी हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ हमारी ये जो एक ब्रह्मांड है जिसकी पृथ्वी पर हम रहते हैं उसमें क्या ये 7 लोक होते हैं। और भगवान आज उसके विषय में बता रहे हैं कि यदि आप इस पृथ्वी इस लोक के इस ब्रह्मांड के हाईएस्ट लोक यानी ब्रह्मलोक में भी चले जाओगे तो क्या होगा, अब्रह्म भुवनालोक का पुनरावृत्ति नोर्जुन। वैसे तो भक्तों यदि तुलना की जाए तो ब्रह्मलोक हमारे इस पृथ्वी लोक में, ब्रह्मलोक की आयु जो होती है ना वो बहुत बहुत ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा आयु होती है वहां पर। जैसे यहाँ इस भौतिक जगत में क्या होता है, 3 बार जब कोई पलक झपकाता है तो 1 निमिष बनता है, 3 निमिष मिलकर 1 सेकंड बनता है, और 60 सेकंड मिलकर 1 मिनट बनते हैं। जब 60 मिनट हो जाते हैं तो 1 घंटा बनता है, और जब 3 घंटे मिलते हैं तो 1 पहर बनता है, जब 4 पहर मिलते हैं तो 1 दिन बनता है, और 4 पहर की 1 रात। उसी तरह जब 15 दिन और 15 रात एक साथ मिलते हैं तो 1 पक्ष बनता है, जैसे एक मंथ में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और 2 पक्ष जब मिलते हैं तो क्या बनता है, 1 मंथ बनता है, और 2 महीने जब मिलते हैं, 2 मास जब मिलते हैं तो 1 ऋतु बनती है, 3 ऋतु जब मिलती है तो 1 अयन बनता है। जैसे साल में 2 अयन होते हैं ना, उत्तरायण और दक्षिणायन, उसके विषय में अभी भगवान आगे के श्लोकों में बताएंगे। और जब 2 अयन मिलते हैं तो 1 ईयर मनुष्य जन्म मनुष्य लोक का 1 साल बनता है, और 1 साल जब इस पृथ्वी लोक में बीतता है तो देवताओं का 1 दिन बनता है। और इस तरह से कल इस संसार में हमारे पृथ्वी लोक पर जब 4,32,000 बीतते हैं तो 1 कलयुग बनता है, 8,64,000 बीतते हैं 14,000 साल, 8,64,000 ईयर्स जब बीतते हैं तो 1 द्वापर युग बनता है, 12,96,000 साल जब बीतते हैं तो 1 त्रेता युग बनता है, 17,28,000 साल जब बीतते हैं तो 1 सत्ययुग बनता है। तो टोटल इन 4 युगों की आयु होती है 43,20,000 43,20,000 ईयर्स जब पूरे होते हैं तो 1 चतुर्युग होता है। और इस तरह के जब 1000 चतुर्युग बीतते हैं तो एक मनवंत्र बीतता है, और एक 71 मनवंत्र, जब 71 मनवंत्र बीतते हैं तो एक कल्प बीतता है, और एक कल्प यानी ये चतुर्युगी जब 1000 बार बीतते हैं तो एक मनवंत्र होता है, और जब 71 मनवंत्र बीतते हैं तो एक कल्प होता है, और एक कल्प क्या होता है जानते हो? ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अभी हम ब्रह्मा जी के लोक के विषय में पूछे तो वहां पर एक दिन जो होता है, यहाँ संसार में 71 मनवंतर बीतते हैं फिर पूरा होता है, और दो कल्प अभी सॉरी जब बीतते हैं, मतलब एक कल्प ब्रह्मा जी का दिन होता है और एक कल्प ब्रह्मा जी की रात होती है, तो जब दो कल्प बीतते हैं तो ब्रह्मा जी का एक संपूर्ण दिन बीतता है, और 720 कल्प जब बीतते हैं तो ब्रह्मा जी का एक साल होता है, और 72,000 कल्प जब बीतते हैं तो ब्रह्मा जी की पूरी लाइफ, यानी ब्रह्मा जी की आयु जो 100 साल है वो क्या है? 72 कल्प। तो उतनी इतनी बड़ी ब्रह्मा जी की लाइफ है, वहां पर यदि एक साल के लिए भी कोई जाए तो यहाँ पर इस भौतिक जगत में 720 कल्प हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के लोक में लाइफ बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी भगवान ने क्या कहा? अब्रह्म भुवनालोका पुनरावृत्ति अर्जुन, माने ब्रह्मलोक में भी चले जाओगे तो भी वापिस इस संसार में आना पड़ेगा, और ये संसार कैसा है वो भगवान ने 15 में बताया, दुखालयम अशाश्वतम, यानी इस संसार में आपको जो कुछ मिलेगा वो दुखदायक होगा। इस संसार में दुख के बगैर कुछ नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखें कि इस संसार में चाहे आप कितने भी भक्त भी क्यों ना बन जाओ, चाहे भक्त हो चाहे अभक्त हो चाहे संसारी हो, तो भी इस संसार में प्रॉब्लम्स आएंगे, टेस्ट आएंगे, दुख आएंगे। जैसे प्रहलाद महाराज, वो तो फुल्ली सरेंडर थे, कितनी भगवान की भक्ति करते थे, और फिर भी उनको इतना प्रॉब्लम्स आए, इतना टेस्टिंग आया है। हिरण्यकश्यपु ने उनको इतना कष्ट दिया, तो भगवान दिखा रहे हैं कि एक डिवोटी कैसा होना चाहिए, मतलब जितना भी कष्ट आए जितना भी दुख आए, जो भगवान पर भगवान की भक्ति करता है वो भगवान के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ये एक अलग बात है। लेकिन इस भौतिक जगत में आनंद तो प्राप्त नहीं हुआ ना। अब दूसरों की बात छोड़िए, कोई व्यक्ति क्या सोच सकता है, जब हम बहुत ज्यादा धनी होंगे तो हम सुखी होंगे, तो फिर अगर हम इतिहास में देखें तो महाराज चित्रकेतु कितने धनी थे, तो लेकिन भले कितने ही धनी हो गए थे वो सुख तो उन्हें नहीं मिला, उनके दुख तो समाप्त नहीं हुए, सारा दिन रोते रहते थे। कोई सोचता है कि मेरा यदि पुत्र बहुत ज्यादा अच्छा होगा तो फिर है ना मैं सुखी हो जाऊंगा, अच्छा पुत्र प्राप्त हो जाए, है ना, चित्रकेतु महाराज जैसे सोचते थे। तो हम इतिहास में देखते हैं त्रेता युग में दशरथ महाराज जिनके पुत्र थे श्री राम के, जैसे श्री राम से बढ़कर कोई अधिक अच्छा पुत्र कैसे हो सकता है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन फिर भी दशरथ महाराज के जीवन में सुख नहीं था, दुखी थे वो, क्योंकि ये संसार दुखों का घर है। कोई सोच सकता है कि यदि मुझे बहुत ज्यादा यश प्राप्त हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तो हम इतिहास में देखें युधिष्ठिर महाराज को कितना यश प्राप्त था, है ना, 3 अश्वमेध यज्ञ किए उन्होंने और उनकी ख्याति स्वर्ग के राजा इंद्र जैसी बढ़ गई, लेकिन फिर भी वो दुखी थे। तो इस संसार में चाहे आप किसी भी स्टेज पर होते हो, दुख मिलना अनिवार्य है। क्यों? बिकॉज दिस मेटेरियल वर्ल्ड मेड फॉर गिव यू दुखा, ये भौतिक जगत आपको दुख देने के लिए क्रिएट किया गया है, आपको प्रॉब्लम्स देने के लिए ही क्रिएट किया गया। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं दुख को क्यों देखूं, मैं दुख को नहीं देखना चाहता, क्योंकि आप ऐसी जगह पर आए हैं जहाँ पर केवल दुख ही दुख है। इस भौतिक जगत की व्याख्या करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है दुखालयम अशाश्वतम, ये लोक दुखों से भरा हुआ है, इस लोक में आनंद नहीं है, तो फिर क्या करना है? भगवान बताते हैं 9.32 में, बोलते अब तुम आ गए हो इस दुखमय संसार में, तो तुम्हें क्या करना है? अनित्यं असुखं लोकं इमं प्राप्य भजस्वर्मा। ये अनित्य और सुख, देखो यही चीज जो भगवान श्री कृष्ण ने 8.15 में बताई, दुखालयम अशाश्वतम, वही चीज भगवान श्री कृष्ण 9.32 में बार बार भगवान इस संसार के विषय में बता रहे। भगवान कहते अनित्यम असुखम, वहां पर यहाँ पर बोल रहे दुखालयम, वहां पर बोलते असुखम। असुखम मतलब जहां पर सुख नहीं है, यहाँ पर कह रहे खाली दुखी दुख है, और फिर वहां पर इस बात को और भी क्लियर के कहते हैं कि नहीं, वहां पर सुख नहीं है, आपको नहीं मिलेगा, आपको केवल दुखी दुख मिलेगा, बिकॉज दिस प्लेस इज फुल ऑफ दुखा। ये संसार जो है वो दुखों से भरा है, दुखालयम है। इवन यू बिकम अ प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड, स्टिल दुखा विल बी देयर। हम देखते हैं कुंती महारानी भगवान की शुद्ध भक्त है, पांडव भगवान के शुद्ध भक्त है, प्रहलाद महाराज भगवान के शुद्ध भक्त है, द्रौपदी भगवान की शुद्ध, और भी जितने भी राजा हरिश्चंद्र और कितने ही महान लोग यहाँ संसार में आए, भले ही वो भगवान के शुद्ध भक्त है, लेकिन क्योंकि वो इस भौतिक जगत में रहते, हरिदास ठाकुर एक दिन में 3 लाख बार जप करते थे, परंतु फिर भी वो इस संसार में थे तो उनको दुख मिल रहा था। ये अलग बात है कि भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको वह दुख सताता नहीं है, क्योंकि वो भगवान के आश्रय में होते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के ऊपर पूरा निर्भर होते हैं, तो भगवान उनको दुख महसूस होने नहीं देते, वो एक अलग बात है। दुख लेकिन आना अनिवार्य है, दुख जब तक आपको इस संसार में भौतिक जगत में आप आओगे, चाहे किसी भी लोक में चले जाओगे, आपको दुख मिलेगा ही मिलेगा। तो फिर भगवान क्या कहते, सॉल्यूशन भगवान बताते हैं कि देखो दुखालय हम संसार मैंने क्रिएट कर लिया है, अब तुम क्या करो, क्योंकि तुम अपनी नालायकी की वजह से तुम इस संसार में आके गिर गए हो, मेरे पास नहीं आए हो, तो क्या करो, अनित्यम असुखम लोकम एवं प्राप्य भजस्वमां। अब क्योंकि इस भौतिक जगत की डेफिनेशन ये है कि ये अनित्य है और असुख है, इसमें सुख नहीं है, तो क्या करो, एवं प्राप्य भजस्वमां, इसे प्राप्त करके आप मेरा भजन करो। इसे भगवान कहते हैं यदि मेरी भक्ति नहीं करोगे तो भले ही ब्रह्म लोक में चले जाओगे, फिर भी पुनरावृत्ति नर्जुन इस भौतिक जगत में वापिस आना पड़ेगा। और ये भौतिक जगत एक जेल की तरह है, चाहे जेल में आपको कितना ही अच्छा रूम क्यों न मिल जाए, लेकिन जेल तो जेल है ना। और इस जेल का जो जेलर है सुप्रीटेंडेंट, वो कौन है, जैसे हर देवी देवता का एक डिपार्टमेंट होता है ना, जैसे सूर्य का डिपार्टमेंट क्या है कि वो प्रकाश देते हैं, तो उस प्रकाश प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो उनकी ड्यूटी है। वैसे ही शिवजी प्रलय करते हैं, आप अगर शिवजी की भक्ति नहीं भी करोगे तो भी प्रलय करेंगे वो, अगर करोगे तो भी छोड़ेंगे नहीं तुमको। उसी प्रकार चंद्र, वायु, वरुण, इंद्र, सारे देवताओं को एक एक काम दिया गया है भगवान की सेवा करने के लिए, वो युक्त हैं, तो फिर क्या होता है, वो एनी हाउ अपनी सेवा करते ही हैं, उनको प्रलोभन देने की आवश्यकता नहीं है। कोई वरुण देव को या इंद्र देव को प्रलोभन नहीं देगा कि भाई आप, हम ये कर रहे हैं तो फिर आप है ना वर्षा करो, नहीं, बस जीव का कर्तव्य, जीव अपना कर्तव्य निभा रहा है और इंद्र अपना कर्तव्य निभा रहा है। तो इस संसार में जितने भी देवी देवता हैं उनकी कोई ना कोई ड्यूटी है, क्योंकि भगवान ने उनके लिए यही ड्यूटी प्रिस्क्राइब की है, तो वो उस ड्यूटी को निभाते। उसी प्रकार यह संसार के बारे में भगवान ने कहा, अनित्यम असुखम लोकम दुखालयम, ये संसार दुखों का घर है, तो इस संसार में दुख देने का डिपार्टमेंट किसको है जानते हो, दुर्गा जी को। दुर्ग कहते हैं किले को, और जो किला यानी कि एक जेल है और उसकी जेलर है दुर्गा देवी। तो जन्म से लेकर इस संसार में जीव जब जन्म लेता है उस समय से लेकर मृत्यु तक वो दुख का ही अनुभव करता है। जन्म लेता है ना बच्चा, तो कभी भी आपने नहीं देखा होगा हंसते हुए जन्म लिया हो किसी बच्चे ने, अवश्य रोता है, नहीं रोता है तो डॉक्टर परेशान हो जाता है, क्यों नहीं रोया, मर मरा हुआ तो पैदा नहीं हुआ, संसार में आ गया, दुखमय संसार में आ गया, रोया नहीं, है ना, पागल है या गूंगा है जो रोया नहीं है अभी तक। क्योंकि अगर इस संसार में कोई सुखी रह सकता है तो सिर्फ पागल मनुष्य, जिसको पता ही नहीं है कि दुखी। अगर अक्कल है तो उसे ये रियलाइज होना चाहिए कि संसार में केवल दुखी दुख है। तो बाय बर्थ इस संसार में सब कोई दुख का अनुभव करते हैं, कब तक, अंतिम सांस तक। तो ये एक अलग बात है कि वो दुखों की कैटेगरी अलग अलग होती है, लेकिन दुख तो आते हैं ना। जैसे अब एक कर्मी जो होता है, जो खाली कर्म कांड करता है, उसको दुख क्यों मिल रहा है? क्योंकि उसके कर्मों के अनुसार उसने कर्म किए तो उसके अनुसार उसको दुख मिलते हैं। और एक जो भक्ति में जीव होते हैं ना, उनको दुख क्यों मिलते हैं? जो भक्ति में होते हैं उनके, अब जैसे आप भक्ति में आते हो, भगवान के पवित्र नाम का जप करते हो, भगवान की कथाओं को श्रवण करते हो, तो आपके पिछले कर्म उसी समय भस्म, जितने भी पिछले कर्मों के रिजल्ट होते हैं, जो भी एक बार भगवान, यहाँ तक कि भगवान के पवित्र नाम का एक बार जप भी करते हैं, तो शास्त्र कहता है नाम नो ही आवती शक्ति पापनर हरणी हरी तावत कर्तुम न शक्तोसी पातकम पातकी नरह। भगवान का केवल एक बार भी जो नाम लेता है, वो एक नाम उस व्यक्ति के उतने पापों को नष्ट कर सकता है जितने पाप वह कर भी नहीं सकता। तो यहाँ प्रश्न उठता है ना कि हम तो सब टाइम है ना भगवान का पवित्र नाम जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, फिर जो पाप नष्ट हो गए फिर कष्ट क्यों? अब कष्ट इस संसार में आना अनिवार्य है, इस बात को समझना होगा। क्योंकि अब जो भक्त होते हैं भगवान के पवित्र नाम का जप करने का अभ्यास करते हैं, तो फिर क्या होता है, वो उन लोग को दुख क्यों मिलता है? क्योंकि उनका टेस्ट होता है। अब ये संसार में जेलर कौन है? दुर्गा देवी, तो उनको दुख देती हैं, टेस्ट करती हैं। और जब वो इन टेस्ट्स में अपने इन परीक्षाओं में पास होते जाते तो वो क्रमशः आगे उन्नति करते हैं, फिर वो भगवान के लोक में जब पूरे टेस्ट क्लियर कर लेते हैं फिर वो भगवान के लोक में जाते हैं। इस संसार में दुख समाप्त नहीं होंगे। और उसके बाद कोई बोले कि अच्छा, तो फिर उनका भी टेस्ट होता है जो भगवान के प्योर शुद्ध भक्त होते हैं। शुद्ध भक्तों का टेस्ट नहीं होता, जैसे देवकी मैया, इस संसार में उन्हें भी दुख मिला, भगवान उनके पुत्र थे फिर भी वो दुखी, क्योंकि सारा जीवन उनको कंस के कारागृह में रहना पड़ा। श्री राम स्वयं साक्षात भगवान इस संसार में आए तो भी हम देखे उनके जीवन में क्या था, माता पिता ने उनको वनवास में भेज दिया, पत्नी भी इनसे दूर हो गई। तो इस संसार में भगवान लीला करके दिखाए, मेरे को भी देखो, इस संसार में आके आनंद प्राप्त नहीं हुआ, निकलो यहाँ से, रहने की जगह नहीं है, सुख नहीं मिलेगा यहाँ से, तो निकलने का अभ्यास करो, उसके लिए कार्य करो। तो जो प्रहलाद है, कुंती महारानी है, पांडव है, भीष्म पिता, उनको क्यों भगवान दुख देते हैं? उनके तो कर्म भी नहीं होते हैं खराब, और ऊपर से उनकी परीक्षा भी नहीं ले रहे भगवान, तो क्या हो रहा है? उनके द्वारा भगवान हम सबको ये दिखाना चाहते हैं कि इस संसार में केवल दुख ही दुख है। तो ये सब भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान की लीला में सहायता करते हैं, और वो दिखाते हैं कि भले कितने ही दुख इस संसार में क्यों ना आए, केवल यदि भगवान आपके साथ है तो वो दुख भी आपके लिए आनंद बन जाते हैं। इसीलिए तो कुंती महारानी कहती है विपदा संत साक्षात तत्र तत्र जगत गुरु। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे पुनः पुनः वो सारे दुख दो, क्योंकि जब आपका दर्शन होता है तब तत्र न भव दर्शनम, फिर भौतिक दुख तो महसूस होते ही नहीं है, भले दुख कितने आते रहे लेकिन आपका सानिध्य उन सब दुखों में भी आनंद प्रदान करता है। तो वास्तव में यदि सुखी होने का कोई एकमात्र मार्ग है तो वो क्या है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलैव नास्तैव 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 प्रतिरण्यथा। हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम एकमात्र साधन है इस कलयुग में शांति प्राप्त करने का, मुक्ति प्राप्त करने का, सिद्धि प्राप्त करने का, और कोई भी मार्ग नहीं है, नहीं है, कदापि नहीं है। तो हम सबको भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए और भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए और अध्ययन करना चाहिए, और साथ में हम सबको मेरे लिए प्रार्थना भी करनी चाहिए ताकि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।